प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना कितना लाभप्रद है, ये हमारे जीवन के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके साथ आत्मिक विकास व उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में हम भाग लें, किंतु इससे पूर्व की आज का ये अध्ययन आरम्भ करें, मन की तैयारी के लिए सुनिए एक मधुर गीत।
साथ थी तो क्या गम कार तो न थे, मेरा है जिंदगी मेरी हमवार तो न थे। थामो हंसी के जहां मुझको तू मिला, ता मोड़ वो हंसी के जहां मुझको तू मिला, खुशियों के सिलसिले हुए ये सच आया हुआ, खुशियों सिलसिले हुए ये सच आया हुआ, तुझसे ये मुलाकात कुछ दुश्वार तो न थी, दुनिया जो साथ थी तो क्या गमकार तो न थी, मेरी।
सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता मित्रों व भाई बहनों को सत्य वचन टीम की ओर से हमारा हार्दिक अभिनंदन। आशा है आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कृपा से कुशल हैं और आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने को तैयार हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों अपने बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के अंतर्गत हम पुराने नियम से लेव्य व्यवस्था की पुस्तक का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर रहे हैं। यह पुस्तक आराधना विधियों की पुस्तक है। प्रायश्चित तथा पवित्रता इस पुस्तक के मुख्य शब्द हैं और यह पुस्तक सिखाती है कि परमेश्वर पवित्र है और इसलिए उसके समीप आने वाले को पवित्र होना अनिवार्य है। जिस प्रकार निर्गमन की पुस्तक मसीह यीशु को एक उद्धारकर्ता के रूप में दर्शाती है, उसी प्रकार लव्य व्यवस्था की पुस्तक उन्हें पवित्रीकर्ता के रूप में प्रस्तुत करती है। सो इसी संक्षिप्त परिचय के साथ हम आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे, किंतु इससे पूर्व कि हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, अपने मनों की तैयारी और आत्मिक सहायता के लिए प्रभु परमेश्वर से सामर्थ्य मांगें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परम प्रधान जीवित और सच्चे परमेश्वर पिताजी, हम बड़ी दीनता के साथ अपने सिरों को आपके आगे झुकाते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने ये सुंदर क्षण हमको प्रदान किए हैं कि हम आपके सत्य और जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। पिताजी, हमारी प्रार्थना है कि इस वचन को समझने में हमारी सहायता करने की कृपा करें, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाएं और अपने वचन को हमारे लिए वास्तविक बना दें, ताकि हम इस पर विश्वास कर सकें। हमारे मध्य में यदि कोई श्रोता भाई बहन किसी रोग से पीड़ित है, या किसी संकट क्लेश परेशानी में फंसा हुआ है, या किसी निराशा में डूबा है, प्रभु आप उसकी सहायता करने की कृपा करें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ तो मित्र, आइए आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज हम 13वें अध्याय को प्रारंभ करेंगे। 13वें अध्याय का मुख्य विषय है कोढ़ की पहचान। 12वें अध्याय में हमने संतान के जन्म के समय माता के शुद्धिकरण की व्यवस्था के विषय में अध्ययन किया। इस व्यवस्था के अनुसार प्रभु यीशु मसीह की माता को भी बलिदान चढ़ाना था, क्योंकि वह पापी थी, वह पाप रहित नहीं थी। किंतु वहां प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई बलिदान नहीं था, क्योंकि वह तो पाप रहित थे। लूका रचित सुसमाचार में हम इस विषय में पढ़ते हैं। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह तो स्वयं संसार के पापों के लिए बलिदान थे। वह परमेश्वर के मेमना है, वो मेमना जो संसार के पापों को उठा ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर संसार के पापों को लादा गया और उन्होंने समस्त संसार के पापों के लिए, उसके छुटकारे के लिए बलिदान दिया। मित्रों, इस अध्याय में हमने सीखा कि समस्त संसार पापी है और उसे एक मुक्तिदाता की आवश्यकता है। प्रत्येक मनुष्य को परमेश्वर के बचाने वाले अनुग्रह की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने पापों के छुटकारे के मूल्य को चुकाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के रक्त की आवश्यकता है। तब हम 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अध्याय 13 का मुख्य विषय कुष्ठ रोग का शुद्धिकरण है, ना कि उसका उपचार। उपचार के पश्चात रोगी शुद्ध होता था और उसे शुद्ध ठहराने का अधिकार केवल याजक को था। आइए इस विषय को हमारे साथ देखिए। लेव्य व्यवस्था की पुस्तक, जो पुराने नियम की तीसरी पुस्तक है, उसका 13वां अध्याय 1-6 पद। लेव्य व्यवस्था 13:1-6। यदि आपके पास बाइबल की प्रति है तो ध्यानपूर्वक देखें, और यदि आपके पास बाइबल की प्रति नहीं है तो सुनने का कष्ट करें। 1-6 पदों में इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, जब किसी मनुष्य के शरीर की त्वचा में सूजन या पपड़ी या श्वेत चमकता दाग हो और उसके शरीर की त्वचा पर कोढ़ का लक्षण दिखाई दे, तब उसे हारून याजक या उसके पुत्रों से जो याजक हैं किसी एक के पास लाया जाए, और याजक शरीर की त्वचा के ऊपर उस निशान को देखे, और यदि उस व्याधि के स्थान के बाल श्वेत हो गए हों और व्याधि शरीर की त्वचा से गहरी दिखाई पड़े, तो वह जान ले कि यह कोढ़ की व्याधि है। जब याजक उसकी जांच कर ले, तब वह उसे अशुद्ध ठहराए। परंतु यदि वह चमकता दाग उसके शरीर की त्वचा पर श्वेत हो, परंतु त्वचा से गहरा ना दिखाई दे और ना वहां के बाल श्वेत हुए हों, तो याजक उस व्याधि वाले व्यक्ति को 7 दिन तक अलग रखे, और याजक उसको 7वें दिन फिर देखे। यदि उसकी दृष्टि में व्याधि में कोई परिवर्तन न दिखाई दे और व्याधि त्वचा पर न फैली हो, तो याजक उसे 7 दिन तक और अलग रखे, और याजक उसको 7वें दिन फिर से देखे, और यदि व्याधि की चमक कम पड़ गई हो तथा निशान त्वचा के ऊपर न फैला हो, तब याजक उसे शुद्ध ठहराए, क्योंकि यह तो पपड़ी मात्र है, और वह अपने वस्त्र धोकर शुद्ध ठहरे। मेरे मित्र, यहां सबसे पहला कार्य था कि जब किसी मनुष्य के शरीर पर दूसरे पद के अनुसार ये लक्षण दिखाई दें, कौन से लक्षण? जब किसी मनुष्य के शरीर की त्वचा में सूजन या पपड़ी या श्वेत चमकता दाग हो और उसके शरीर की त्वचा पर कोढ़ का लक्षण दिखाई दे, तब उसे हारून याजक या उसके पुत्रों से जो याजक हैं किसी एक के पास लाया जाए। अर्थात उसे याजक के पास लाना आवश्यक था कि याजक उसकी गंभीरता पूर्वक और सूक्ष्मता से जांच करे। मित्रों, हम सब आत्मिक कोढ़ से ग्रस्त हैं। परमेश्वर पिता किसी कोढ़ी को स्वर्ग में स्थान नहीं देंगे, इस बात को हम निश्चित रूप से समझ लें। जिस प्रकार से मनुष्य कोढ़ी को अपने समाज में स्थान नहीं देता, पुराने नियम में तो कोढ़ी की दशा और भी गंभीर थी। वह अपने प्रियो में अपने समाज में नहीं रह सकता था। इसी प्रकार से परमेश्वर पिता किसी कोढ़ी को स्वर्ग में स्थान नहीं देंगे। परमेश्वर पिता स्वर्ग जाने से पूर्व ही उसका उपचार करेंगे। कोढ़ एक प्रकार का पाप है। कोढ़ी न केवल समाज से पृथक किया जाता था, वरन उसको पवित्र स्थान से भी वंचित कर दिया जाता था। दूसरे शब्दों में, पाप मनुष्य को समाज तथा परमेश्वर दोनों की संगति व सहभागिता से अलग कर देता है। हमें इस पाप रूपी कोढ़ से चंगाई की आवश्यकता है। मसीह का रक्त हमें इस भयंकर रोग से शुद्ध करता है। हम पुराने नियम में नामान कोढ़ी के विषय में पढ़ चुके हैं। नामान कोढ़ी जब तक अपने पाप को छुपाए रहा, अपने कोढ़ को छुपाए रहा, वो कोढ़ से ग्रस्त रहा, और जब उसने अपने कोढ़ को प्रभु के जन के सामने स्पष्ट किया और परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, वह कोढ़ से शुद्ध किया गया, उसको आदर और सम्मान प्राप्त हुआ। तब 7वें और 8वें पदों में इस प्रकार से लिखा है, परंतु अपनी शुद्धता प्रमाणित करने के लिए याजक के पास जाने के पश्चात यदि पपड़ी त्वचा पर और अधिक फैल जाए तो वह व्यक्ति पुनः याजक के पास जाए और याजक उसे देखे, यदि खुरंड चमड़े के ऊपर फैल गई हो तब याजक उसे अशुद्ध ठहराए, वह तो कोढ़ ही है। मित्रवर, यदि याजक ने जांच करने पर व्यक्ति को कोढ़ से ग्रस्त पाया तो वह उसे कोढ़ी घोषित कर देता है और उस व्यक्ति को समाज से बाहर, नगर की सीमा से दूर सीमित कर दिया जाता है। तनिक इस स्थिति पर ध्यान करें। दूसरी स्थिति इसके विपरीत है। यदि जांच करने पर याजक उसे शुद्ध घोषित कर देता है तो स्पष्ट है कि शुद्ध व्यक्ति कोढ़ी की परिस्थितियों में नहीं रहेगा, वह तो शुद्ध मनुष्य की सुविधाओं का आनंद उठाएगा। मित्रों, हमारे लिए कैसा महान आत्मिक संदेश है यहां। पाप कोढ़ के समान एक गंभीर व घृणित रोग है। इसमें ग्रस्त और इससे शुद्ध होने पर ध्यान करें। यदि आप इस आत्मिक पाप से, इस कोढ़ से ग्रस्त हैं तो आपकी स्थिति गंभीर है। आप परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के लोगों के साथ संगति नहीं कर सकते। यदि आपने अपनी दशा को पहचाना है और आप अपनी आत्मा में कोढ़ के धब्बों को देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के समीप आइए। प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य रक्त हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है, हमें हमारे सारे अधर्म से बचाता है। तब हम देखेंगे कोढ़ के पुराने रोग की पहचान। 9 से 13 पदों में इस विषय में बताया गया है, यदि किसी व्यक्ति को कोढ़ की व्याधि हो तो उसे याजक के पास लाया जाए, तब याजक उसे देखे और यदि त्वचा की सूजन श्वेत हो, जिसके कारण रोएं भी श्वेत हो गए हों, और उस सूजन में खुला घाव हो, तो यह उसके शरीर की त्वचा में पुराना कोढ़ है, और याजक उसे अशुद्ध ठहराए और उसे अलग बंद ना रखे, क्योंकि वह तो अशुद्ध है। और यदि कोढ़ त्वचा में और भी अधिक फूट निकले और उस व्यक्ति में जिसे व्याधि है सिर से लेकर पैर तक जहां तक याजक उसे देख सकता है फैल जाए, तो याजक जांचे और देखो यदि कोढ़ उसके सारे शरीर में फैल गया हो तो वह उस व्यक्ति को शुद्ध ठहराए। वह तो बिल्कुल श्वेत हो गया है और वह शुद्ध है, परंतु जब कभी उसके ऊपर खुला घाव दिखाई दे तब वह अशुद्ध ठहरे और याजक खुले घाव देखकर उस व्यक्ति को अशुद्ध ठहराए। खुला घाव अशुद्ध होता है, वह कोढ़ ही है, पर यदि वह खुला घाव ठीक होकर श्वेत हो जाए तो वह व्यक्ति याजक के पास जाए और याजक उसे जांचे। यदि वह व्याधि श्वेत हो गई हो तो याजक व्याधि वाले व्यक्ति को शुद्ध ठहराए, वह शुद्ध है। मित्रों, यहां हम एक बड़ा असाधारण कथन पढ़ते हैं जो 13वें पद में है। यदि व्यक्ति का सारा शरीर श्वेत हो जाए तो वह रोगी शुद्ध घोषित किया जाए। 14 से 17 पदों में हमने पढ़ा कि खुला घाव पापी मनुष्य के पुराने स्वभाव को दर्शाता है, किंतु उसे क्रूस पर दंडित किया जा चुका है। पापी मनुष्य के पापी स्वभाव को क्रूस पर दंडित किया जा चुका है, और जब ये एक विश्वासी में प्रकट होता है परमेश्वर पिता इसे अवश्य ही दंडित करेंगे। यद्यपि पाप को क्रूस पर दंडित किया जा चुका है, परंतु जब ये किसी विश्वासी के अंदर पुनः प्रकट होता है तो परमेश्वर पिता इसे बिना दंड के नहीं छोड़ते, वो इसे दंडित करेंगे। शरीर अर्थात पुराना मनुष्य परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। शारीरिक जीवन परमेश्वर के विरोध में कार्य करता है, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में कार्य करती है। इसलिए शरीर अर्थात पुराना मनुष्य परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। केवल वह स्वभाव अथवा जीवन जो पवित्र आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है वही परमेश्वर के ग्रहण योग्य है। और इसलिए मुझे और आपको एक आत्मिक जीवन की आवश्यकता है, वो जीवन जो पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार किया जाता है, वो जीवन जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है। परमेश्वर पिता उसी जीवन को ग्रहण करते हैं। तब हमारा अगला विषय है शरीर पर फोड़े द्वारा कोढ़ की पहचान। आइए देखें 18वें पद से देखिए, जब किसी के शरीर की त्वचा का फोड़ा ठीक हो गया हो और उस फोड़े के स्थान में श्वेत सूजन या लाली लिए हुए श्वेत चमकता दाग हो तो वह याजक को दिखाया जाए और याजक जांचे और देखो यदि वह दाग त्वचा से गहरा दिखाई दे और उसके ऊपर के बाल भी श्वेत हो गए हों तो याजक उस व्यक्ति को अशुद्ध ठहराए। ये कोढ़ की व्याधि है जो फोड़े में से फूट कर निकली है, परंतु यदि याजक जांचे और देखो उसमें श्वेत बाल नहीं है और वह त्वचा से गहरा नहीं है और उसकी चमक कम हो गई है तो याजक उसे 7 दिन तक अलग रखे, परंतु यदि वह त्वचा पर और भी अधिक फैल जाए तब याजक उसे अशुद्ध ठहराए। वह तो कोढ़ की व्याधि है, परंतु यदि श्वेत दाग अपने स्थान पर ही बना रहे और ना फैले तो वह केवल फोड़े का दाग है, याजक उस व्यक्ति को शुद्ध ठहराए। फिर यदि किसी के शरीर की त्वचा में जलने का घाव हो और वह घाव लाली लिए हुए श्वेत अथवा श्वेत चमकता हुआ दाग बन जाए तब याजक उसको जांचे और यदि चमकते हुए दाग के रोएं श्वेत हो गए हों और वह त्वचा से गहरा दिखाई पड़े तो ये कोढ़ है जो उस जलने के घाव में फैल गया है, अतः याजक उस व्यक्ति को अशुद्ध ठहराए क्योंकि यह कोढ़ की व्याधि है। परंतु यदि याजक देखे कि सचमुच उस चमकते दाग पर कोई श्वेत बाल नहीं है और ना वह त्वचा से अधिक गहरा है और उसकी चमक धीमी है तब याजक उस व्यक्ति को 7 दिन तक अलग रखे, फिर 7वें दिन याजक उसको देखे। यदि व्याधि त्वचा में और अधिक फैल गई हो तब याजक उस व्यक्ति को अशुद्ध ठहराए, क्योंकि यह कोढ़ की व्याधि है। परंतु यदि वह चमकता हुआ दाग अपने स्थान पर रहे और त्वचा में और अधिक ना फैले, परंतु उसकी चमक धीमी पड़ जाए, यह सूजन तो जलने के कारण है, याजक उस व्यक्ति को शुद्ध ठहराए, क्योंकि यह उस घाव का दाग है। मित्रों, पुराने कोढ़ के समान पुराना पाप भी फैलता है और बढ़कर अहितकर हो जाता है, हानिकारक हो जाता है। बहुधा मन परिवर्तित व्यक्ति ऐसा कहता है कि मुझे अमुक बुरी आदत से छुटकारा मिला है, मुझे शराब की आदत से छुटकारा मिला है, मुझे जुआ खेलने की आदत से छुटकारा मिला है, मुझे व्यभिचार की आदत से छुटकारा मिला है इत्यादि। किंतु कुछ वर्षों पश्चात वह पुराना पाप पुनः उभरता हुआ दिखाई देता है। ऐसी अवस्था में हमें उस व्यक्ति की सावधानी से जांच करने की आवश्यकता होती है। कलीसिया के भीतर ऐसे अनेक लोग पाए जाते हैं जिनका पुराना जीवन बहुत अच्छा था, आदर्श जीवन था, परंतु धीरे धीरे उनके जीवन में पाप ने जन्म ले लिया है और वो पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में हमें ऐसे व्यक्तियों की सावधानी से जांच करने की आवश्यकता होती है, ताकि हम उनसे धोखा ना खाएं और उनका वह कोढ़ रूपी पाप कलीसिया में ना फैले, समाज में ना फैले, उसका तुरंत उपचार किया जाए। हमें उस व्यक्ति को बताना है कि उसका कोढ़ रूपी पाप उसके जीवन में पाया जाता है, वह दूर हो जाएगा, क्योंकि उसके पास एक मोक्षदाता है जो उसे बचाने की सामर्थ्य रखता है। हमें ऐसे व्यक्ति को उसके पाप के विषय में बताना है और साथ ही ये भी बताना है कि वह उस कोढ़ रूपी पाप से बच सकता है। हम वहां उसे दोषी ठहराकर, डांट फटकार सुनाकर, उसे उसी दशा में छोड़कर चले जाने के लिए नहीं हैं। यदि हम उसकी सहायता नहीं करेंगे तो वह दुखी होगा, वह अपने पाप में नाश हो जाएगा, उसका जीवन दूसरों के लिए हानिकारक जीवन हो जाएगा, उसके जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। मित्रों, उसे यह जानने की नितांत आवश्यकता है कि उसके पास एक बचाने वाला अर्थात शुद्ध करने वाला है, जो उसे क्षमा कर सकता है और उसे सारे अधर्म से शुद्ध कर सकता है। मित्रों, ये उद्धारकर्ता उस कोढ़ को शुद्ध करने की योग्यता रखता है जो एकाएक दोबारा उभर जाता है। आपको चिंता करने या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे भी हैं, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के समीप आ जाएं और अपने पाप को स्वीकार कर लें। वे आपको पुनः शुद्ध करेंगे, आपको पुनः ग्रहण करेंगे, परमेश्वर की संगति में रहने का आदर प्रदान करेंगे। लेवी व्यवस्था की पुस्तक के 13वें अध्याय में हम कोढ़ की पहचान के विषय में अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हमने सीखा कि पाप एक भयानक कोढ़ है। परमेश्वर पिता कोढ़ को स्वर्ग में स्थान नहीं देंगे और इस कोढ़ का उपचार नितांत आवश्यक है, और इसलिए आवश्यक है कि हम प्रत्येक आत्मिक फोड़े, फुंसी व दाने को ध्यानपूर्वक जांचें और तुरंत अपने महायाजक प्रभु यीशु मसीह के समीप उसकी पहचान और उपचार के लिए आ जाएं। स्मरण रखिए, आप पाप में जीवन को लेकर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तब 29 से 34 पदों में सिर तथा दाढ़ी के कोढ़ की पहचान के विषय में बताया गया है। अनेक बार विश्वासियों के समूह में उन लोगों के जीवन में पाप छिपा रहता है जो कलीसिया में मुख्य स्थान रखते हैं। आवश्यकता है कि हम ऐसे पाप को सावधानी से दंडित करें। ऐसी दशा में कलीसिया के पासवान को परमेश्वर के प्रेम में होकर ऐसे गुप्त पापियों को उल्हाना देना चाहिए ताकि वे अपने पाप में नाश ना हो, साथ ही दूसरों को भी गंदा ना करें। 35 से 37 पदों में बताया गया है कि याजक का ये कार्य है कि वह प्रत्येक बात को सावधानी से जांचे और पहचाने, तब निर्णय ले और शुद्ध अशुद्ध की घोषणा करे। और तब हम 45 और 46 पदों में एक गंभीर कथन को पढ़ते हैं जो इस प्रकार से है। आप भी हमारे साथ देखें। जिस व्यक्ति में कूढ़ की व्याधि हो, उसके वस्त्र फाड़े जाएं और उसके सिर के बाल बिखरे रहें, और वह ऊपर से होंठ को ढांप कर पुकारे, अशुद्ध अशुद्ध। जितने दिन तक व्याधि उसमें रहे, वह व्यक्ति अशुद्ध ठहरे, क्योंकि वह अशुद्ध है। वह अकेला रहे, वह छावनी से बाहर ही रहे। मित्रों, कोढ़ी के वस्त्र फाड़ दिए जाएं, वह अपना ऊपर वाला होंठ ढांप कर पुकारे, अशुद्ध अशुद्ध। कोढ़ी का ये रूप और कृत्य उसके कोढ़ी होने को प्रकट करेगा। उसे किसी के संपर्क में नहीं आना है, क्योंकि उसमें रोग को दूसरों में फैलाने की क्षमता है। मित्रवर, ठीक इसी प्रकार पापी मनुष्य में पाप को दूसरों में फैलाने की क्षमता है। उसका रोग दूसरों को लगने वाला रोग है। एक पिता को अधिकार है कि वह अपनी इच्छा से जैसा जीवन व्यतीत करना चाहता है करे, किंतु उसे यह अधिकार नहीं है कि वह अपने पुत्र को नरक में ले जाए। कोढ़ी अपने आसपास की प्रत्येक वस्तु को अशुद्ध कर डालता है। उसी प्रकार एक पापी जन का पाप प्रत्येक उस व्यक्ति और वस्तु व स्थान को अशुद्ध कर डालता है जिसे वह स्पर्श करता है। मित्रों, कोढ़ी को छावनी से बाहर अकेला रहना है। एक पापी का भी यही अंत है, वह पापियों की भीड़ में भी अकेला ही रहेगा। किंतु आपके पास आशा है। प्रभु यीशु मसीह में आपके पापों की क्षमा और आपके अधर्म की शुद्धता का आश्वासन है। अब इन वचनों के साथ हम आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। प्रिय श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको लाभ पहुंचा होगा। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की है और इसके द्वारा आपको आत्मिक आशीष मिली है। यदि आज के कार्यक्रम से संबंधित आपके हृदय में कोई प्रश्न या संदेह है, तो आप हमें इस पते पर अवश्य लिखकर भेजें। इस विषय में हम आपकी पूरी पूरी सहायता करेंगे। हमारा पता है, कार्यक्रम सत्य वचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।